46 गुणों में से 34 तो अतिशय थे, 8 प्रातिहारी थे, तो उनमें से आज 42वां गुण सिंहासन प्रातिहार्य। स्फुरितांशु रत्न दीदिति परिविच्छुरितामरेन्द्र चापच्छाय ध्रियते मृगेन्द्रवर्यैः स्फटिकशिला घटित सिंहविष्टरमतुलम्। स्फुरिते इत्यादि सिंहविष्टरम्, ये श्लोक है, संस्कृत भाषा में आर्या छंद है, बल्कि स्कंद छंद कह सकते हैं, क्योंकि 12-20 मात्राएं हैं, तो इसमें सिंहासन का वर्णन है। सिंह और आसन, दो शब्दों से सिंहासन शब्द बना है। अब उसका क्या स्वरूप होता है, इसको अपने को समझना है। ध्रियते मृगेन्द्र वर्येह सिंह प्रधानी है, वह सिंहासन जो होता है उसको सिंह धारण करते हैं। मृगेन्द्र वर्येह, जो सबसे उत्कृष्ट श्रेणी के सिंह हैं, वो उन सिंहासनों को धारण करते हैं। वो सब दिव्य है, ये जंगल वाले शेर नहीं है, दिव्य सिंह होते हैं, वो धारण करते हैं। सिंह प्रधान ही, जो प्रधान सिंह है वो। अब सिंह में कितनी प्रजातियां होंगी, अब आप सोचेंगे कि सिंह तो सिंह, लायन माने लायन, जिसके बाल होते हैं, मेन बोलते हैं अंग्रेजी भाषा में, MANE, लेकिन ऐसा नहीं है। सिंह की अनेक प्रजातियां, पश्चिमी देशों में पाए जाने वाले कुछ सिंह अलग प्रकार के होते हैं, अफ्रीका वाले सिंह अलग होते हैं। अफ्रीका में भी जो गैबॉन टेरिटरी है, वो जो क्षेत्र है, वहाँ पर बड़े आकार के चीते हैं, सिंह जो है वो कुछ दूसरे स्थानों पर है, तो वहाँ के हाथी भी बड़े होते हैं, सिंह भी बड़े होते हैं, तो वो एक प्रजाति है। फिर इधर एशियाटिक लायंस जो होते हैं, उसमें सासण गिर एक अभयारण्य है, वहाँ लगभग 250-300 शेर, उसकी एक ऑप्टिमल संख्या बनी रहती है। पुराने बूढ़े हो जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, नए जन्म लेते हैं, वो आगे अपने वंश को बढ़ाते रहते हैं। तो एक पुस्तक में लिखा था कि वहाँ 5 प्रकार के सिंह हैं, तो उन सिंहों में कुछ सिंहों के बाल ऐसे पीछे की तरफ जाते हैं, और एक शार्दूल प्रजाति है उसकी। संस्कृत में जो शार्दूल शब्द है वो तेंदुआ का वाचक है, लेकिन वहाँ पर शार्दूल प्रजाति का एक सिंह होता है, उसका सिर सबसे बड़ा होता है और उसके पूरे बाल ऐसे सामने आते हैं। और प्रकृति में भी थोड़ा सा अंतर होता है, बाकी सिंहों से अलग प्रकृति होती है उसकी। और फिर एक केसरी है, एक सावज है, एक पंकज है, एक बटुक है। बटुक छोटी साइज का सिंह होता है, एक क्षुल्लक महाराज को वहाँ पर उन्होंने पकड़ लिया था एक सिंह ने, वो जो नेमिनाथ भगवान वाला एक नीचे वो बना हुआ है ना, आचार्य निर्मल सागर महाराज श्री यहाँ पर रहा करते थे, तो वहाँ पर उन सब लोग मना करते हैं कि शाम को बाहर सामायिक नहीं करना, जंगली जानवर आ सकते हैं। अब उनको पता नहीं था, वो बैठ गए वहाँ शाम को बाहर, और फिर एकदम वो देखते हैं कि मेरे पास कोई बड़ा सा कुत्ता खड़ा है, ऐसा उनको लगा। फिर जब उसकी आँख देखी तो आँख थोड़ा अंधेरा सा हो रहा था, तो आंखें कुत्ते जैसी नहीं लगी उनको। फिर तत्काल समझ में आ गया कि ये तो शेर है, तो उन्होंने दुपट्टे से अपना चेहरा ढांक लिया। उनने ये सोचा कि अगर ये मेरे आंखों पर या मुख पर प्रहार करेगा तो फिर मेरी दीक्षा नहीं हो पाई, मुनि दीक्षा नहीं हो पाई। आप सोचो कि यमराज सामने खड़ा है और उनको दीक्षा की चिंता हो रही है, और उस सिर को चेहरे को बचाने के लिए उन्होंने दुपट्टे से ऐसे मुंह ढांक लिया अपना। तो उसने यहाँ हाथ पर पंजा मारा तो ये पूरे नाखून से उनका ये भाग कट गया, डेल्टॉयड वाला नीचे का हिस्सा। पर फिर उनको कुछ लकड़ी जैसी कुछ दिखी वहाँ पर, तो उस लकड़ी से उन्होंने शुल्लक महाराज जी ने वो किया, कुछ प्रयास किया, कुछ जो भी उनको करना था, तो फिर वो शेर ऐसे दीवार फांद करके बाहर निकल गया। फिर इनको लगा कि यार अब जान बच गई, तो फिर कपड़े उन्होंने अलग कर दिए। मुनि दीक्षा नहीं हुई है, लेकिन बोले कि अब मेरे को नहीं रखना, दीक्षा के संस्कार मैं ले लूँगा, कोई गुरु मिल जाएंगे तो। और फिर उन्होंने आर्यनंदी महाराज जी से फिर कुछ समय बाद जहाँ मिलन हो गया उनका, उन्होंने फिर मुनि दीक्षा ली प्रॉपर विधिवत, जो उसकी संस्कार विधि होती है ना, उस विधि से ली। और तब उनका नाम आत्मनंदी रखा गया। आत्मनंदी मुनि महाराज थे ना एक यहाँ पर खानदेश में भी उनका विहार होता रहा, महाराष्ट्र में वो मराठी बोलते थे वो। और जब वो गृहस्थ थे तब उनको आचार्य शांति सागर महाराज जी की पिंछी मिली थी, और कमंडल भी मिला था उनका पुराना, तो उन्होंने किसी को दिया था। तो फिर अभी भुज में जो शांति सागर धाम बना ना, शांति सागर धाम ही नाम है क्या, भुज में जो आचार्य शांति सागर महाराज जी का एक वो बना हुआ है स्मारक जैसा, तो चूंकि आचार्य शांति सागर महाराज जी भुज ग्राम में रह चुके हैं, तो वहाँ पर उनकी एक आकृति बनी हुई है, एक छवि बनी हुई है। तो फिर वो जो कमंडल जिसको मिला था मध्य प्रदेश में, कोई एक भाई थे उनको आचार्य जी ने वो कमंडल दिए, उनको आत्मनंदी महाराज जी ने वो कमंडल दिया था। तो वहाँ कोई ब्रह्मचारिणी दीदी का भाव हुआ कि ये कमंडल गृहस्थ के घर की अपेक्षा आचार्य शांति सागर महाराज जी के वहीं पर विराजमान हो जाए तो एक स्मरण में आने वाली बात हो जाएगी। तो उनने वो कमंडल वहाँ भिजवाया और फिर हमारे हाथ से उन्होंने वहाँ पर रखवाया। वहाँ पर और भी दो मुनि महाराज थे, माता जी लोग थी, फिर वहाँ पर वो कमंडल स्थापित हुआ। लगभग 25 जून 2021, अभी दो दो तीन साल पहले की बात है। वो कमंडल ऐसे तुम्बी का बना हुआ कमंडल, ऐसे बड़ा कमंडल सफ़ेद रंग का, और ऊपर ऐसे हैंडल है उसका। तो अभी जो हम लोगों का के कमंडल है वो नारियल वाले हैं, कुछ लकड़ी वाले भी बनते हैं, तो वहां पर विराजमान किए। सिंह की चर्चा चलते चलते बटुक सिंह की बात आई जिसने उन पर उपसर्ग किया था, मुनि महाराज। अभी अपन कहीं भी उपसर्ग विजेता बोल देते हैं, लेकिन उपसर्ग विजेता बहुत बड़ी वस्तु होती है। वो जिनको शेर ने पकड़ा था वो भी उपसर्ग विजेता नहीं मानते अपने आप को, अब तो खैर उनकी संलग्न हो गई। तो इन पांच सिंहों में मृगराज कौन है, राजा कौन है? पांचों तो राजा नहीं हो सकते, जंगल एक है, रहते पांचों हैं। तो मृगेंद्र जो है, मृगराज, वहां जो जानकार लोग हैं वो बताते हैं कि वो एक विशेष प्रकार का सिंह होता है, उसके गर्दन पर बिल्कुल केसर के पत्ती जैसे केसरिया बाल होते हैं, उसको केसरी सिंह बोलते हैं। वो मृगराज होता है, क्योंकि जब वो गर्जना करता है तो जंगल के मदमत्त हाथियों का मद झरना बंद हो जाता है। हाथी जब मस्ती में आता है तब मद झराता है, आपने कभी देखा हो? पता नहीं, ये हाथी के आँख के पीछे वाले भाग से ये मद झरता है और उस समय सब बाकी हाथी जो है उसके पास से दूर हट जाते हैं, क्योंकि ये मदमत्त हाथी अपने मद में किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। वो दीवारें गिरा देता है, कभी जंजीरें तोड़ देता है, कभी किसी की हानि कर देता है। मदमत्त हाथी इसको कहते हैं। तो जब केसरी सिंह गर्जना करता है तो अब कई बार किसी प्राणी संग्रहालय में भी आपको केसरी सिंह मिल सकता है देखने। जब वो गरजता है, अगर कोई उसके पिंजरे के पास में खड़ा हो तो उसको पैरों में जैसे डीजे की आवाज आती है ना, वैसे उसके पैरों में उस शेर की गर्जना के स्पंदन उसको स्पष्ट महसूस होते हैं। और उसकी जो ध्वनि है 6 से 8 किलोमीटर तक सुनाई देती है, इतनी भयानक गर्जना करता है वो केसरी सिंह। वैसे गर्जना कोई दूसरा सिंह नहीं कर सकता। सिंह गर्जना करते हैं सारे के सारे, वो गरजते हैं और फिर शुरू में थोड़ा सा गैप देते हैं और लास्ट में थोड़ा वेग से गरजते हैं। आपने कभी सुनी हो तो पता नहीं, जैसे चालू होते हैं ऐसे करके चालू करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि जैसे अंगड़ाई ले रहा हो कोई, लेकिन फिर जब गर्जना करते हैं तो सारे प्राणी एकदम सन्नाटा हो जाता है जंगल में। ये हमने स्वयं कभी इसका अनुभव किया हुआ है। नैनागिरी के जंगल में एक सिंह था, थोड़ा वृद्ध हो गया था वो इधर तालाब में पानी पीने आता था रात के समय 8 बजे के बाद। ये सभी प्राणियों का ऐसा रहता है, जो जंगली रात में घूमने वाले जो प्राणी होते हैं वो 8 बजे के बाद आकर के जलाशय से पानी पीते हैं। तो उसकी गर्जना अष्टमी को हम लोगों ने सुनी थी। 3 साधु थे हम लोग, एक मुनि स्वभाव सागर महर्षि थे और एक एलक जी और थे प्रशम सागर महर्षि। तो इतनी भयानक गर्जना थी उसकी, पर वो केसरी सिंह जैसी नहीं थी, उससे कमज़ोर थी, पर वो गरज रहा था, वो है उसकी प्रकृति है। पर केसरी सिंह जब गरजता है तो फिर हाथियों का मद उतर जाता है, मदमत हाथी एकदम शांत हो जाता है। कुछ ऐसे प्रकृति के भी नियम हैं जिसका सारे प्राणी पालन करते हैं मनुष्य को छोड़कर। प्रकृति के नियम सब प्राणी पालते हैं। तो यहाँ पर उसका वर्णन है, वो जो भगवान का सिंहासन है उसको धारण करने वाले वो केसरी सिंह, केसरी सिंहों के ऊपर वो सिंहासन, और वो दिव्य होते हैं। वो ऐसे त्रियंच गति वाले नहीं होते, क्योंकि अब जब तक समोसन लगा हुआ है तब तक वो त्रियंच गति वाले सिंह कैसे सिंहासन को धारण कर पाएंगे, और धारण कर भी लेंगे तो फिर सिंहासन तो भारी होगा ना। ठीक है, भगवान के प्रभाव से वहाँ किसी को कष्ट नहीं हो सकता, पर तो भी वो सारी व्यवस्थाएं दिव्य हैं। और 5,000 धनुष ऊपर है भगवान भूमि से, तो वहाँ पर वो व्यवस्था रहती है, प्रातिहार्य है भगवान का। और कैसा होता है वो सिंहासन? तो बोलते कथम भूतम स्फुरितांश स्फुरिता दीप्ता अंशव किरणा यस्य, प्रकाशमान किरणें होती है उस सिंहासन। पुनरपि कथम भूतम इत्याह रत्नी इत्यादि रत्नानां दीधय तयः किरणाः तैः परिविच्छुरितम्। पर सिंहासन की किरणों के साथ साथ उसमें जड़ित जो रत्न हैं उनकी किरणें भी वहां पर फैली हुई होती है। परिविच्छुरितम कुर्वरीकृतम, तो उसके कारण वो अलग अलग रंगों की किरणें एक साथ वहाँ पर व्याप्त रहती है, तो वो कुर्वरीकृत लगता है एकदम, तो ऐसा लगता है कि उसमें बहुत सारे रंग हैं सिंहासन में। और उसके कारण यत अमरेन्द्र चापम इंद्र धनु तस्य छाया शोभा यस्य, जैसे इंद्रधनुष कितना सुंदर लगता है वैसे सिंहासन अपनी किरणों से और उसमें जड़ित रत्नों की किरणों के कारण अत्यंत सुंदर लगता है, इंद्रधनुष जैसा लगता है सिंहासन। इंद्रधनुष को यहाँ महाराष्ट्र में मेघधनुष बोलते हैं या गुजरात में बोलते हैं मेघधनुष, यहाँ इंद्रधनुष ही बोलते हैं, कुछ भी बोलो, इंद्रधनुष बोलो, मेघधनुष बोलो, रेनबो बोलते हैं इंग्लिश में। और स्फटिक शिला घटितम, वो उसकी रचना कैसे हुई होती है, तो स्फटिक की शिला से पाषाण से तया घटितम निर्मितम, उससे वो सिंहासन निर्मित होता है। यत एवं विदन तत एव आतुलम अनुपम, चूंकि वो इस प्रकार की संरचना वाला होता है इसलिए वो जगत के अन्य सिंहासनों से अतुलनीय होता है, अर्थात अन्य जितने भी सिंहासन, चाहे वो इंद्र का सिंहासन हो, चक्रवर्ती का सिंहासन हो, अर्ध चक्रवर्ती का, मंडलेश्वर राजा का, किसी का भी सिंहासन क्यों ना हो, भगवान के सिंहासन के विषय में जब यहाँ वर्णन आ रहा है तो वो कह रहे हैं कि वो अतुल्य है। ये नहीं कह सकते कि वो चक्रवर्ती के सिंहासन जैसा जिनेन्द्र का सिंहासन होता है, नहीं, वो जिनेन्द्र का सिंहासन अतुलनीय होता है, सबसे अलग होता है, ये अभिप्राय हुआ। अब तिलोय पंडित्य में देखें क्या लिखा हुआ है, सिंहासनम विशालम विशुद्ध फलिहोवले निम्मविदं वर्रेण निकर खजितं कोसक्कै वर्णितं ताणम्। कह रहे हैं कि सिंहासन बड़ा सिंहासन होता है, विशाल सिंहासन होता है, और विशुद्ध स्फटिक पाषाणों से निर्मापित होता है, बनाया जाता है, और वर रेण निकर निखचितम, श्रेष्ठ रत्नों के समूह से खचित होता है, जड़ित होता है, यानी उस स्फटिक के पाषाण में ही बहुत सारे रत्न जड़े हुए होते हैं। जैसे मेटल में अंगूठी की, जो धातु की अंगूठी होती है उसमें रत्न जड़े जाते हैं, वैसे ही उस स्फटिक के सिंहासन में अनेक रत्न जड़ित होते हैं, खचित होते हैं। और अंत में इतना ही कह रहे हैं, को सक्कति वर्णितम ताणम, तो 24 तीर्थंकरों के उन 24 सिंहासनों का वर्णन करने के लिए कौन समर्थ हो सकता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अवर्णनीय होता है वो सिंहासन। अन्य ग्रंथों में और देख लेते हैं, जो बहुत ऊंचा है, महापुराण के 23वें पर्व में 174वें काव्य में सिंहासन का वर्णन है, 177वें काव्य में जयति वृषभो यस्यो तुंगम विभाति महासनम हरिपरिधृतम रत्नानद्धम परिस्पुरदंशुकम अधरित जगन मीरोर्लीलां विडम्बयदुच्चकैर्नतसुरतीरीटाग्रक्रावद द्युतिरेवतर्जय हरिणी छंद। आचार्य भगवत जिन सिंह स्वामी कह रहे हैं कि जो बहुत ऊंचा है, अनुवाद पंडित पन्नालाल साहित्याचार्य जी का, जो बहुत ऊंचा है, सिंहों के द्वारा धारण किया हुआ है, रत्नों से जड़ा हुआ है, चारों ओर चमकती हुई किरणों वाला है, संसार को नीचा दिखला रहा है, मेरु पर्वत की शोभा को विडंबित कर रहा है। यानी मेरु पर्वत भी बहुत ऊंचा है, लेकिन भगवान के सिंहासन को देखने से लग रहा है कि मेरु पर्वत भी इसके सामने फीका पड़ जाए। और जो नमस्कार करते हुए देवों के मुकुटों के अग्रभाग पर लगे हुए रत्नों की कांति की तर्जना करता सा जान पड़ता है, ऐसा लगता है जब देवलोग नमस्कार करते भगवान को तो सिंहासन उनके मुकुटों के रत्नों की कांति को, वो सिंहासन जो है भगवान का, वो शर्मिंदा करता है, लज्जित करता है। यानी देवों के मुकुटों के रत्न सिंहासन की कांति के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। ये अलंकारिक वर्णन है। ऐसा जिनका बड़ा भारी सिंहासन सुशोभित हो रहा है, वे भगवान तीर्थंकर सदा जयवंत हो। अब संयोग से सिंहासन के बाद यहाँ पर एक जो काव्य आ रहा है, 178वां जो काव्य है महापुराण के 23वें पर्व में, उसमें इस प्रश्न का समाधान है कि भगवान जिनेंद्र को समोह शरण में कोई छू सकते हैं कि नहीं। तो आप लोगों के अंदर भी कोई ना कोई ऐसा ज्ञान होगा, धारणा होगी कि नहीं छू सकते, अथवा किसी की ये भी धारणा हो सकती है कि नहीं छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, नहीं छू सकते हैं, दोनों प्रकार की धारणाएं हो सकती है। तो अधिकतर लोगों की धारणा ये है कि भगवान को कोई छू नहीं सकता। कुछ कवियों ने काव्य भी लिख दिए कि गणधर इंद्र न छू सके, ऐसी पंक्ति भी लिख दी है कुछ कवियों ने। लेकिन अपने पूर्वाचार्य जो कह रहे हैं उनके वचन प्रामाणिक है, अपेक्षाकृत, क्योंकि ये बहुत बड़े आचार्य थे जिनसेन आचार्य। इन्होंने जय धवला, जो उनके गुरु 20,000 श्लोक प्रमाण जय धवला की रचना करके चले गए, संलेखना हो गई उनकी, तो जो बाकी बची थी जय धवला पूरी नहीं हुई थी। 20,000 श्लोक प्रमाण रचना तो हो गई थी, तो 20,000 श्लोक प्रमाण रचना तो उसके एक तिहाई रचना है। जय धवला तो 60,000 श्लोक प्रमाण है, तो बचे हुए 40,000 श्लोक जिनसेन आचार्य महाराज ने लिखे थे। तो वो जिनसेन आचार्य लिख रहे हैं कि भगवान को कोई छू सकता है कि नहीं, इस विषय में वो क्या लिख रहे हैं इसको अपन देख लें, और जिनकी ये पूर्व धारणा थी कि नहीं छू सकता वो सुधार लें। और वो जो कवि महोदय हैं जिन्होंने गणधर इंद्र न छू सके, वो अपनी काव्य कला से उस पंक्ति के स्थान पर किसी अन्य अधिक सुंदर पंक्ति का समावेश कर ले जो आगम सम्मत हो। इसमें तो किसी को कोई खेद नहीं हो सकता, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती, ये तो आगम का कथन है। और जो भी सम्यक दृष्टि जीव होते हैं वो आगम को ग्रहण कर ही लेते हैं। तो इसमें ही लिखा। अब फिर एक प्रश्न आएगा, ये प्रथमानुयोग आगम है क्या? आगम तो जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत, ऐसी भी बड़ी चर्चा चलती है, ऐसा भी बड़ा प्रचलन हो गया है कि आगम तो जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत है, ये प्रथमानुयोग वगैरह आगम थोड़ी है। तो फिर उनकी भी सहूलियत के लिए, उनकी जानकारी के लिए भी हम बता दें कि चार अनुयोगों का जो स्वरूप शास्त्रों में बताया है उस पर एक बार वो अपनी दृष्टि डाल लें तो समाधान वहीं से मिल जाएगा, यहाँ पर हमें कुछ बोलना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपके सामने कुछ पंक्तियाँ रखते हैं जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि आगम क्या है। एक ही पंक्ति में अपन देख लेते हैं, पंचास्तिकाय ग्रंथ की जैसे इन आचार्य कृत टीका में लिखा है, प्रथमानि योग चरणानि योग कर्णानि योग द्रव्यानि योग भेदेन, ये चार नाम दे दिए और इन चारों के भेद से चतुर्विधः आगमाभ्यासः श्रुतभावना, चार प्रकार का जो आगम अभ्यास है उसका नाम है श्रुत भावना। अब क्या करोगे? अब इसमें ये तो नहीं कह रहे हैं कि जीव सिद्धांत कर्म सिद्धांत ही आगम है, यहां तो चारों अनुयोगों का अभ्यास करना, चारों अनुयोग रूप आगम का अभ्यास करना श्रुत भावना है, ऐसा लिखा हुआ है। और ऐसा ही वर्णन अन्यत्र भी है, वैसे एक पर्याप्त है। देखो अगर आचार्य लिख रहे हैं कि चारों आगम है तो फिर इसमें अपन कोई प्रतितर्क क्यों करें? है आगम का अर्थ आगम है, अपन शब्दार्थ भी देख लो ना, आगम का अर्थ क्या होता है पहले बतलाया था हमने। सबसे पहला शब्द है शास्त्र। शास्त्र क्या है? दिव्य ध्वनि। फिर उसका विषय जिसमें आता है उसको भी अपन शास्त्र बोलते हैं क्योंकि वो दिव्य ध्वनि से सम शास्ता शास्ती इति शास्त्रम। शास्ता भगवान है और वो जो अपनी दिव्य ध्वनि द्वारा जिन शासन को शासित करते हैं तो वो जो दिव्य ध्वनि है वो शास्त्र है। फिर उसको गणधर देव सुनते हैं, सब लोग सुनते हैं, लेकिन गणधर देव उसके बीज पदों को भी ग्रहण करते हैं और उससे 12 अंगों की रचना होती है। तो गणधर देव सुनते हैं इसलिए उसको श्रुत कहते हैं। फिर वो काव्य में उसको ग्रंथित करते हैं, ग्रंथ रूप रचना करते हैं, द्वादशांग। भगवान के दिव्य ध्वनि में तो द्वादशांग से भी अधिक विषय है लेकिन गणधर उसको 12 अंगों में निबद्ध करते हैं तो उसको ग्रंथ कहते हैं। गणधर देवी ही गंथियम सम्मम, सुनी होगी अपनी प्राकृत पंक्ति, अरहंत भासी यत्थम गणधर देवी ही गंथियम सम्मम। तो गणधर देव ग्रंथ रचना करते हैं, फिर उन ग्रंथों को कई आचार्य पद्यात्मक सूत्र और गद्यात्मक सूत्रों में निबद्ध करते हैं। तो अंग बाह्य श्रुत में फिर 14 भेद होते हैं, अंग प्रविष्ट श्रुत में 12 अंग होते हैं। तो 12 अंग अंग प्रविष्ट में आता है आते हैं और 14 जो अंग प्रविष्ट से बाहर निकाले हुए उनका ही अंगों का ही संक्षिप्त सार है, उनको अंग बाह्य श्रुत कहते हैं। तो फिर ये षटखंड आगम सूत्र, तत्वार्थ सूत्र, ध्यान सूत्र आदि कई सूत्र आज उपलब्ध हो रहे हैं। सूत्र का अर्थ क्या है? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सूत्रम सूत्र विदो विदु, जिसमें अल्प अक्षर हो और अर्थ स्पष्ट हो, विषय अधिक हो उसको सूत्र कहते हैं। तो इसी शास्त्र श्रुत ग्रंथ सूत्र और फिर एक शब्द आगम होता है। आगम का अर्थ क्या है? जो तीर्थंकर हैं उनको बहुत समय व्यतीत हो गया, वो मोक्ष चले गए, तो अपने पास उनकी वाणी कैसे आएगी? तो श्रुत परंपरा से आएगी, उनसे गणधर सुनेंगे, गणधर से उनके शिष्य सुनेंगे, उनके शिष्य सुनेंगे, उनके 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 ऐसे सुनते सुनते गुरु मुख से सुनते हुए जो शिक्षा काल बताया, पहला काल दीक्षा काल, दूसरा काल शिक्षा काल, 12 वर्ष तक गुरु मुख से शिष्य को चारों अनुयोगों का श्रवण अनिवार्य है। तो वो श्रुत परंपरा कहलाती है, गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य ऐसे आगे चलती रहती है। और फिर जो तीर्थंकर से लेकर यहां तक आ जाता है, आगच्छति इति आगमः, उसको आगम कहते हैं। बीच में कोई चीज और जुड़ गई और वो आ गया, वो आगम नहीं है। कई लोग कुछ भी जोड़ देते ना, जैसे अभी वो पंक्ति की अपन बात कर रहे थे कि गणधर इंद्र न छू सके, तो अब इसका उत्तर देखिए कि छू सकते हैं कि नहीं। तो आचार्य कह रहे हैं समग्रम वै दधीन सकल शशभृन्मंडल गताम सितक्षत्रं भाति त्रिभुवन गुरोर्यस्य विहसत् जयत्येष श्रीमान् वृषभजिनराण् निर्जितरिपुर् नमद्देवेन्द्रोद्यन् मुकुटमणिघृष्टाङ्घ्रिकमलः। ये संस्कृत हुई, अब हिंदी देख लीजिए। तीनों लोकों के गुरु ऐसे जिन भगवान का सफेद छत्र पूर्ण चंद्र मंडल संबंधी समस्त शोभा की हसी करता हुआ, यानी पूर्णिमा के चंद्रमा से भी सुंदर वो तीन छत्र होते हैं भगवान के, सुशोभित हो रहा है, जिन्होंने घाती कर्म रूपी शत्रुओं को जीता है, जिनके चरण कमल नमस्कार करते हुए इंद्रों के देदीप्यमान मुकुटों में लगे हुए मणियों से घर्षित हो रहे हैं। इसको सरल शब्दों में अपन कहें तो सीधा सीधा ये अर्थ है कि इंद्र लोग समवसरण में भगवान जिनेंद्र के चरणों पर अपने मुकुट रगड़ते हैं, घर्षित हो रहे हैं लिखा ना, और उधर स्पष्ट लिखा है संस्कृत में मुकुट मणि घृष्टांग्रि कमल, घृष्ट घर्षण को प्राप्त, घृष्ट का अर्थ घर्षण को प्राप्त। और जो अंतरंग तथा बहिरंग लक्ष्मी से सहित हैं, ऐसे श्री वृषभ जिनेन्द्र सदा जयवंत हों। आदिनाथ भगवान की जय हो, ये कह रहे। तो इस काव्य से ये बात स्पष्ट होती है कि घर्षण स्पर्शन बिना नहीं होता। सीधा सा गणित, जिस वस्तु का स्पर्श ही ना हुआ हो उसका घर्षण कैसे संभव है? देखो, अर्थापत्ति करने में कभी कभी स्खलन होता है। जैसे अपन ने जो 10 अतिशय पढ़े थे केवल ज्ञान के, उसमें एक अतिशय था कि भगवान पर उपसर्ग नहीं होता। जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो फिर अब उपसर्ग नहीं हो सकता। तो उपसर्ग नहीं होता, इसकी अतिशयोक्ति यह हो गई कि भगवान को कोई छू ही नहीं सकता। तो ये अतिशयोक्ति एक ऐसी वस्तु है कि ये सुनने में बहुत प्रभावशाली लगती है, पर कभी कभी वो अतिशयोक्ति अप्रामाणिक भी हो सकती है। तो इसलिए यहां पर वो अर्थ नहीं लेना कि भगवान को कोई छू नहीं सकता। अब वो जब मुकुट रगड़ रहे हैं इंद्र लोग, तो क्या उनके अंदर ये भाव आते होंगे कि हम वहां जाकर अपने मुकुट रगड़ेंगे? क्या ये भाव आते होंगे? मुकुट तो सिर पर लगा हुआ है, इसलिए वो वहां पर घर्षित हो रहे हैं चरण मुकुट के रत्नों से। वास्तव में तो वो अपना सिर लगाना चाह रहे हैं भगवान के चरणों में। और जो भगवान के चरणों में सिर लगाता है, तो सिर लगाने के पहले क्या वो हाथ नहीं लगाता होगा? प्रश्न है हमारा। हम कोई फैसला नहीं दे रहे, यहाँ न्यायाधीश नहीं बनकर बैठे हुए। आप विचार करो इस बात पर। तो ये सारी क्रियाएं भक्ति पूर्वक हो रही है, और इस दौरान भगवान का स्पर्श भली भांति हो रहा है, तो इसको उपसर्ग की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ये कह लो कि उपसर्ग करने वाला छू नहीं सकता, ऐसा कह लो ना। भक्त नहीं छू सकते, ये कैसे कह सकते हो? हमें स्वयं आचार्य विद्यासागर महर्षि ने सन 84 में एक श्लोक सुनाया था, वो अभी तक कंठस्थ है। उसमें आचार्य श्री ने ये बताया था, यानी भगवान को छूने की क्या महिमा है, वो उस श्लोक में बताई थी। संभव है आचार्य श्री को भी अभी कंठस्थ हो, उनकी स्मृति भी जबरदस्त है। बल्कि हम तो अपने आप को उनकी तुलना में बहुत कम समझते हैं, उनकी स्मरण शक्ति विलक्षण है। ठीक है, हमें याद है कुछ श्लोक, वो एक अलग बात है, लेकिन गुरु तो गुरु है। तो उन्होंने श्लोक सुनाया, पद्मासन समासीन श्याम मूर्तिर दिगंबर। ये उन्होंने अजैन ग्रंथ से सुनाया श्लोक। पद्मासन समासीन श्याम मूर्तिर दिगंबर दर्शनात् स्पर्शनादेव कोटि यज्ञ फल प्रदः। क्या अर्थ हुआ इसका? एकदम सरल अर्थ है, पद्मासन समासीन। आपको सबको पता है कि समोसरण में भगवान कौन से आसन में होते हैं? पद्मासन में। समासीन होते हैं, भली भांति विराजमान होते हैं। और उनका वर्ण क्या लिखा है उसमें? श्याम मूर्तिर, सांवली है छवि जिनकी, श्याम मूर्ति है जो, ऐसे तीर्थंकर के विषय में वो श्लोक है। तो ऐसे तीर्थंकर कौन थे? नेमिनाथ भगवान। तो श्याम मूर्तिर, और कैसी छवि है? दिगंबर दिशा ही है अंबर अर्थात वस्त्र जिनके। ऐसे जो भगवान है, तीर्थंकर भगवान, दर्शनात् दर्शन से स्पर्शनादेव और स्पर्शन मात्र से, एव शब्द लिखा है, मात्र एव का पर्यायवाची है। दर्शन और स्पर्शन मात्र से कोटि यज्ञ फल प्रद, जो उनके संप्रदाय में यज्ञ किए जाते हैं, तो करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करने वाले जिनेंद्र भगवान है। और केवल दर्शन कर लो, केवल स्पर्शन कर लो, करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। तो आज कुछ लोगों ने थोड़ा अपनी बुद्धि को अतिरिक्त प्रयोग में लाकर वंदना के जो 32 दोष हैं उसके साथ जोड़कर, बात वंदना के कौन से 32 दोष हैं, तो उन 32 दोषों में से हम एक दोष का यहां पर उल्लेख कर रहे हैं जिसकी वजह से कुछ लोग विरोध करते हैं कि भगवान की प्रतिमा को छूना नहीं चाहिए, भगवान के पैर को हाथ मत लगाओ। कई मंदिरों में तो बिल्कुल उन्होंने फरमान जारी कर दिया है, फतवा जारी कर दिया। तो वो 32 दोष जो है उनमें से ये दोष प्रविष्ट नाम का दोष है। इस दोष में ये बताया गया है, और ये दोष परमेष्ठियों की वंदना के लिए भी लागू होता है, साधु की वंदना आचार्य की वंदना में भी ये दोष लागू होता है। उसमें ये लिखा है कि हत्थंतरेण बाधम संपास संजलि, मूलाचार के 611वीं गाथा में ये बात लिखी हुई है कि जब कोई साधु आचार्य की वंदना करते हैं तो वो हत्थंतरेण एक हाथ दूरी से वंदना करे, कौन साधु। फिर आर्यिकाओं के लिए भी एक गाथा दी है मूलाचार में कि आर्यिका आचार्य से 5 हाथ दूर होकर वंदना करें, उपाध्याय से 6 हाथ दूर होकर वंदना करें, और साधु से 7 हाथ दूर बैठकर वंदना करें। तो क्या होता है कि कभी कभी यदि अपन आगम की धारा में न बहते हुए अपनी बुद्धि को आवश्यकता से अधिक प्रयुक्त कर लेते हैं तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो वो प्रविष्ट दोष जो है वो प्रतिमा के लिए भी निर्दिष्ट है कि जब जिन प्रतिमा की आप वंदना कर रहे हैं तब भी साधु इतनी दूरी बनाकर ही वंदना कर सकता है, एक हाथ की जो दूरी है उसके अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाएंगे तो प्रविष्ट नाम का दोष लगेगा। ठीक है, तो ये दोष कौन सी क्रिया का दोष है, अब भी तो हमने नाम बताया था वंदना, ये वंदना का दोष है। पर उन्होंने ये अर्थ लगा लिया कि जितनी विधियां कर रहे हो किसी विधि में आप वहां मत जाओ, तो ये तो अनुचित हो गया ना, अन्याय हो गया ना। आचार्यों ने वंदना में बताया कि वंदना में प्रविष्ट, आप वंदना कैसे कर रहे हो, 3 प्रदक्षिणा लगाते हो, अब पड़गान के समय भी एकदम पास से परिक्रमा नहीं लगाई जाती, विवेक रखने की बात है, कुछ दूरी रखिए। और आचार्य विद्यासागर महाराज ने तो 89 के चतुर्मास में कुंडलपुर के अंदर कहा था कि जब आदिनाथ भगवान का पहली बार पड़गान हुआ था तो उनकी परछाई पर भी उन्होंने पैर नहीं रखे थे, पड़गान करने वालों ने। कौन थे पड़गान करने वाले, क्या ऐसे जीभ हिला रहे हो, मुंह हिला रहे हो, ढंग से आवाज निकाल कर बोलो ना, कौन थे पड़गान करने वाले। देखो 3 जन थे, श्रेयांश जो थे वो युवराज थे, और उनके जो बड़े भाई थे वो हस्तिनापुर के राजा, एक साथ दो दो राजा क्यों होंगे, हस्तिनापुर के राजा सोमप्रभ है, तो उनके जो छोटे भाई हैं वो युवराज थे, और राजा की जो रानी थी वो लक्ष्मीमती थी, तो इन तीनों ने मिल करके उनका पड़गान किया था, प्रदक्षिणा की थी, और तीनों ने मिलकर इक्षुरस का आहार कराया था। अभी कुछ लोगों को इस पर भी आपत्ति है कि नहीं रानी ने नहीं किया था, वही लोग थे, रानी नहीं थी। अब और ऐसे चित्र भी निकल गए। अब देखिए, आप 24 तीर्थंकरों का महापुराण नाम का एक आपको कहीं किसी अलमारी में मिल जाएगा, वो नाम याद रखना, 24 तीर्थंकरों का महापुराण, उसमें आप चित्र देख लेना। रानी लापता हो गई पिछली शताब्दी में, जबकि साक्षात जो पड़गान विधि हुई थी वहां पर 3 जनों ने पड़गान किया था। लेकिन ये अपनी धारणा वाले लोग जिन शासन में जो परिवर्तन है अपने मन से करना चाहते हैं वो कर डालते हैं। क्या है? क्योंकि उनके पास साधन है और अपने निर्देश के अनुसार वो कंपोजर को जैसा बोलेंगे वो बेचारा वैसे ही बनाएगा। और क्या, चित्रकार वो पूछेगा कि क्या बनाना है, बोले कि वो मुनि महाराज खड़े हुए हैं और फिर वो राजा और युवराज दोनों उनको आहार दे रहे हैं, बस ठीक है, बना दिया उसने, रानी गायब। तो इतना भेदभाव समझ से परे है। देखो, मुक्ति में एक नियम बताया है कि जो धागा मात्र भी रखेगा उसको मुक्ति नहीं मिलेगी, ठीक है, लेकिन भक्ति में ये कहां से नियम आ गया भेदभाव वाला? भक्ति में भेदभाव की बात आगम नहीं कर रहा, बाकी जिनको करना है करने दो, कोई बात नहीं। तो फिर ये जो स्पर्शन वाली बात आ गई उसमें ये तर्क हो गया कि वंदना में एक हाथ दूरी बताई है, तो छू नहीं सकते, कभी नहीं छू सकते प्रतिमा को। अभिषेक के समय की बात अलग है, तो वहां भी उन्होंने रास्ता निकाला, बात अलग है। अलग का मतलब क्या है, एक्सप्लेन करो ना जरा, कैसे अलग है? वो भी तो भक्ति की क्रिया है। कोई अभिषेक भगवान को साफ करने के लिए किया जाता है? जिनकी ऐसी धारणा हो उनसे प्रतिप्रश्न है। पंडित नाथूराम डोंगरी जी ने उनसे प्रतिप्रश्न किया था कि नंदीश्वर द्वीप में जो भगवान की प्रतिमा है वहां धूल नहीं है, तो भगवान कभी भी मलिन ही नहीं होते, स्वच्छ ही रहते हैं, 2400 घंटे स्वच्छ रहते, तो फिर वहां अभिषेक क्यों करते हैं इंद्रादि देव? इसका जवाब दो। अगर अभिषेक क्रिया भगवान का स्वच्छीकरण करने के लिए है तो इसका जवाब दो। या कृत्रिम चैत्यालय में तो धूल नहीं है, फिर वहां अभिषेक क्यों? देव विमानों में भी अभिषेक होता है, तिलोय पंडित्य में उल्लेख है, तीसरे महाधिकार में, 8वें महाधिकार में लिखा हुआ है कि विमानों में भी जो जिन प्रतिमाएं होती हैं उनका अभिषेक होता है। तो अभिषेक धूल साफ करने की क्रिया नहीं है। अपनी कल्पनाएं मत लगाओ जिन शासन में, कल्पना करके तो भटक जाओगे, कल्पना करते ही हुए तो भटके हो इतने दूर तक, यहां तक कैसे पहुंचे अपनी कल्पनाओं से? अब और कल्पना करोगे आगम में तो फिर और कहीं से कहीं पहुंचोगे। कल्पना मत जोड़ो, जैसा आगम है उसको वैसा रहने दो। और फिर इसमें भी फिर रास्ता मत निकालो आड़ा टेढ़ा कि नहीं वो प्रतिमा का अभिषेक अलग होता है। एक बार चर्चा हुई थी ना कि वो प्रतिमा अभिषेक है, चतुर्थाभिषेक है, वो जन्माभिषेक नहीं है, आदि आदि। तो ये सारी बातें, इन सबके समाधान है, अपन कभी फिर से इसको अपन एक बार एक स्पर्श कर लेंगे। अब चलो अपन उन्हीं की बात को लेकर के उन्हीं से प्रश्न करते हैं, ठीक है। अगर प्रविष्ट दोष आता है तो प्रतिमा को नहीं छू सकते, और साधु भी गुरु की वंदना करते समय गुरु के पैर नहीं छू सकते, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो एक कदम और आगे बढ़ते हैं। वैयावृत्ति कर सकते हैं क्या साधु गुरु की? वैयावृत्ति छुए बिना कर सकते हैं या छूकर? तो अब इसका क्या जवाब है? तो आड़े टेढ़े रास्ते मत निकालो, फंस जाओगे खुद। देखो, जो बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं वो खाल की छाल निकालने वाले दिमाग भी है इस दुनिया में। ज्यादा तर्क मत करो, आगम है, जिन वाणी है, जो कहा है उसको मान्य करो। समझ में नहीं आता तो अगले भाव में पूछ लेना श्रुत केवली केवली से। अभी तैयारी तो कर लो वहां पहुंचने की। यहां अगर तर्क कुतर्क करोगे तो वहां भी नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि तर्क कर जिन वच में शंका न धार, अगर जिन वाणी में शंका धारण की तो फिर यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। दौलत राम जी ने लिखा ना तीसरी ढाल के अंत में, दौल समझ सुन चेत सयाने, काल वृथा मत खोवे। यह नर भव फिर मिलन कठिन है जो सम्यक नहीं होवे। अगर सम्यक तो नहीं हुआ तो फिर मनुष्य पर्याय दोबारा मिलना मुश्किल है। तो अब वैयावृत्ति में छू सकते हैं, और वंदना में, वंदना की जो विधि है, क्रिया है, उसमें क्या करना होता है? प्रदक्षिणा लगाते हैं, बैठकर नमस्कार करते हैं, कृति कर्म करते हैं। तो उस दौरान आपको नहीं छूना है, इतनी सी बात है। उस दौरान आपको एक हाथ की दूरी रखना है। आप जो पाठ करेंगे भक्ति का, स्तोत्र का पाठ करेंगे, तो उस समय आपको एक हाथ की दूरी रखना है। उसका एक युक्ति संगत अभिप्राय ये भी है कि आप ज्यादा पास से करोगे तो मुंह से छींटे उन पर पड़ जाएंगे, परमेष्ठी पर। तो उतनी दूरी रखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर अंचेमी पूजेमी वंदामी, वंदामी के अपन ने चर्चा की। वंदामी के बाद क्या आता है? नमन सामी। नमन सामी की जो क्रिया है वो वंदना से अलग है। तो नमस्कार में आप चरण स्पर्श करो या चरण के ऊपर मस्तक रखो, वो कोई दोष नहीं है, वो तो नमस्कार की विधि है, वो कोई दोष थोड़ी है। ये बात थी। तो दर्शनात् स्पर्शनात् एव कोटि यज्ञ फलप्रद। दर्शन से स्पर्शन मात्र से ही वो नेमिनाथ भगवान की छवि करोड़ों यज्ञों का फल प्रदान करती है। कितनी सुंदर बात है। जैनम जयत शास्त्र। थोड़ा विस्तार हो गया आज। वो घड़ी शायद पीछे है क्या? नहीं, ठीक है। इसमें 9:24 हो गए, अधिक समय ले लिया हमने, तो क्षमा प्रार्थी है। जैनम जयत शास्त्र। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहें कहें, प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गए, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें, और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरे। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले, और मैं पा जाऊं मोक्ष महा सुख को।